जय राध माधव पुण्य विहाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare Hare Hari Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मस्वराज काचार्य स्वान गिरी शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद तिलापृष्ठ भक्ति सिद्धांत श्री गोस्वामी तिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौर हरि परमानंदे। आप लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे, बहुत जगह है इधर खाली। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से चौथा स्कंद अध्याय 21, महाराज पृथु द्वारा उपदेश श्लोक संख्या 26। जुयम् तथा अनुमोदध्वम् पितृ देव ऋषयः अमलः कर्तुः शास्तु अनुज्ञातु तुल्यं यत् प्रत्या तत् फलम्। जूयं तद् अनुमोदध्वाम्। जूयं तद् अनुमोदध्वाम् पितृदेवर्षयो मला। पितृदेवर्षयो मला कर्तु शास्त्रु अनुज्ञातु। कर्तु शास्त्रु अनुज्ञातु तुल्यं यत् प्रेत तत् फलम्। तुल्यम यत् प्रेत तत्फलम् जूयम् तद् अनुमोदध्वाम् जूयम् तद् अनुमोदध्वाम् पितृदेवर्षयो मला पितृदेवर्षयो मला कर्तुम् शास्त्रु अनुज्ञातु तुल्यम् यत् प्रेत तत्फलम् Matajis. उपस्थित आप सभी लोग तत् उसका अनुमोदध्वम मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन करें पितृ लोक से आने वाले लोग देवा स्वर्ग से आने वाले लोग ऋषयः बड़े बड़े मुनि तथा साधुगण अमला पाप कर्मों से निर्मल कर्तु कर्ता शास्तु आज्ञा देने वाला अनुज्ञातु समर्थक का तुल्यम समान यत् जो प्रत्य मरकर तत् वह फलम फल अनुवाद और तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जो शिवल प्रसाद है श्री प्रभुपाद की मैं समस्त शुद्ध अंतःकरण वाले देवताओं पितरों तथा साधु पुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल इसके कर्ता आदेशकर्ता तथा समर्थक के द्वारा समान रूप से भोग्य होता है तात्पर्य पृथ्वी महाराज की सरकार निर्दोष थी, क्योंकि यह वैदिक आदेशों के अनुसार चलाई जा रही थी। पृथ्वी महाराज पहले ही बता चुके हैं कि सरकार का मुख्य कर्तव्य यह देखना है कि सभी लोग अपना अपना कर्तव्य निभाएं और कृष्ण भावनामृत के पद तक ऊपर उठें। सरकार को इस तरह चलाया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतः कृष्ण भावना भावित हो सके। अतः राजा पृथु चाह रहे थे कि वे इसमें उनका सहयोग दें, क्योंकि उनकी सहमति होने पर मृत्यु के पश्चात उन्हें भी राजा के ही समान लाभ मिलेगा। यदि कुशल राजा होने के कारण पृथ्वी महाराज को स्वर्ग की प्राप्ति हो तो उनको सहयोग देने वाले प्रजा भी उनके साथ ऊपर उठ सकेंगे। चूंकि इस समय जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया जा रहा है वह शुद्ध परिपूर्ण तथा वैधानिक है और पृथ्वी महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रहा है, अतः जो भी इस आंदोलन में सहयोग देता है या इसके नियमों को स्वीकार करता है उसे वही फल मिलेगा जो कृष्ण भावनामृत को फैलाने वाले कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्निर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्भियैमा पुरो विभो निर्माय सेते अदमूनभूषय भुक्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकम् सोलम् कृषिष्ठम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भावराधिका माधुरी अस्वादे सुभगाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माला डालने वाले थोड़ा माला को झाड़ दें अच्छा होगा, इसमें चिट्टियां रहती है और पुजारी लोग झाड़ू मार कर सब उसमें डाल देते हैं तो सब वो सब पूरा लगता है फिर से नहाना पड़ेगा, तो चिट्टी पूरे शरीर में पड़ गई है। अब पहले झाड़ लिया करो। हरे कृष्णा। तो महाराज पृथु एक समय की बात है, वे एक यज्ञ कर रहे थे, जैसा कि श्लोक 12 में बताया गया है। तेरह में एकदा आसीन महासत्र दीक्षा तत्र दियोक्षाम समाजो ब्रह्मर्षिणाम च राजर्षिणाम च सत्तमः। एकदा आसीत महासत्र, एक समय की बात है, महाराज पृथु, सत्र का मतलब होता है यज्ञ और महासत्र का मतलब महान यज्ञ। महान यज्ञ का वे व्रत लिए यानी दीक्षा लिए यज्ञ करने के लिए। उस समय वहां पर बहुत लोग इकट्ठे हुए थे यज्ञ में, कहते हैं यहां पर उस सभा में समाजो ब्रह्मर्षि नाम, उस सभा में ब्रह्मर्षि लोग एकत्रित थे, राजऋषि नाम और राजर्षि लोग, सत्तमह और भक्त इत्यादि। तो प्रजा के अलावा ब्रह्मर्षि, राजर्षि और शुद्ध भक्त भी वहां पर एकत्रित हुए थे। प्रश्न उठता है कि राजा के द्वार पर राजर्षि, ब्रह्मर्षि और भक्त लोग क्यों जाते हैं? ये लोग राजा से दूर रहते हैं, जिस प्रकार से महाराज प्रताप रुद्र बड़े महान वैष्णव भक्त थे, लेकिन फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो यह प्रमाणित करता है कि यह जो सत्र हो रहा था, हालांकि राजा बुलाए भी नहीं थे, महाराज पृथु बुलाए नहीं थे, लेकिन वहां पर भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हो रहा था, इसलिए ये सब लोग वहां पर एकत्रित हो गए थे। वैसे ही सुखताल में जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा सुनाने जा रहे थे, तो उस समय विश्व ब्रह्मांड के अनेक अनेक लोक लोकांतरों से राजर्षि, ब्रह्मर्षि इत्यादि सब लोग आए थे। इसलिए आए थे कि महाराज परीक्षित भी वहां पर एक दीक्षा ले चुके थे भगवत कथा सुनने का। तो जहां पर हरि कथा हो, जहां पर भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य हो, तो वहां पर हमें अवश्य पधारना चाहिए। वहां पर जितने लोग एकत्रित थे, उन लोगों का अनुमोदन किए महाराज पृथु, अंग्रेजी में कहा जाए तो वेलकम एड्रेसिंग, उनको वेलकम किए और बाद में एड्रेस करना शुरू किए। तो जहां से महाराज पृथु एड्रेस कर रहे हैं, मैं उस श्लोक से लूंगा, और यह श्लोक उनके एड्रेस का, अनुमोदन का उपसंहार है। यहां पर सुत गोस्वामी कहते हैं, चारु चित्रपदम स्लक्षम मिष्टम गुण अविलकलम सर्वेषाम उपकारार्थम तदा अनुवादितम इव। महाराज पृथु जब एड्रेस कर रहे थे सभास्तों को, तो यहां पर वर्णन किया गया है चारु। चारु शब्द का अर्थ होता है सुंदर। महाराज पृथु का जो बॉडली फीचर था, हम लोग सबका सुंदरता देखते हैं उनके शरीर से शुरू करते हैं। इस श्लोक से पहले महाराज पृथु के शरीर का वर्णन किया गया है कि कैसा उनका शरीर था, उनके सिर के काले तथा चिकने बाल अत्यंत सुंदर तथा घुंघराले थे, और शंख जैसी गर्दन शुभ रेखाओं से अलंकृत थी। वे अत्यंत मूल्यवान धोती पहने थे और शरीर के ऊपरी भाग में चादर ओढ़े थे। चूंकि महाराज को जग संपन्न करने के लिए दीक्षित किया जा रहा था, अतः उन्हें अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारने पड़े थे, जिससे उनकी प्राकृतिक शारीरिक शोभा दृष्टिगोचर हो रही थी। उन्हें काला मृग चर्म पहनने तथा उंगली में कुश बलय पहने देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ के पूर्व महाराज प्रतु समस्त विधि संपन्न कृत संपन्न कर चुके थे। जय श्री गौनिताय राधारस बिहारी की जय। तो महाराज पृथु देखने में बड़े सुंदर लगते थे। जहां पर यह यज्ञ की जा रही थी वह स्थान भी बड़ा सुंदर था। जिस समय यह यज्ञ की जा रही थी उस समय भी बड़ा सुंदर था। वातावरण बिल्कुल सुंदर वातावरण था। तो चारों शब्द ये बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब प्रकार से सुंदरता थी। सुंदरता सुंदर वस्तु को देखने से मन अपने आप उधर चला जाता है कि नहीं? चाहे कोई भी सुंदर वस्तु हो, आंख जब चला जाता है तो मन को खींच लेता है वो सुंदर वस्तु, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कोई भी सुंदर हो, जिसको जो अच्छा लगता है। सुंदर वस्तु का यही गुण है कि अपने तरफ वो खींच लेता है। तो इसमें यह देखना चाहिए कि जब उपदेश देना हो, एड्रेस करना हो या कुछ कहना हो तो टाइम प्लेस एंड सरकमस्टेंसेज का ध्यान रखना चाहिए। तो टाइम प्लेस सरकमस्टेंस सब बड़े सुंदर थे बाह्य दृष्टिकोण से। आंतरिक दृष्टिकोण से महाराज पृथु स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे, उनमें कलुषता का कोई सवाल ही नहीं था। उनकी इंद्रियां उनके बस में थी, इसलिए जितेंद्रिय होने के नाते वे सुंदर थे। वाणी का यहां पर वर्णन किया गया है क्योंकि वे वाणी से कुछ कह रहे थे, कुछ कहने जा रहे थे, तो स्वाभाविक है कि वाणी होगा। बिना वाणी, जो वाणी हो उसमें कुछ वचन होगा, बिना वचन का वाणी कैसे? जैसे कोई कहे समुद्र में पानी है, समुद्र का अर्थ होता है पानी का समूह। समुद्र में पानी कहना ये उचित नहीं है। कोई कहे रसगुल्ला में जूस है, रसगुल्ला देखे है ना, तो बिना जूस का रसगुल्ला का अस्तित्व नहीं हो सकता है, तो ये गलत चीज है। रसगुल्ला मतलब जूस के साथ में हो गया, नहीं तो रस नहीं रहेगा, केवल गुल्ला रहेगा तो रसगुल्ला नहीं कहलाएगा। वैसे ही कोई कहते हैं कृष्ण में आनंद है, कृष्ण में आनंद नहीं है, कृष्ण स्वयं आनंद है। कृष्ण में आनंद कहने का मतलब कि आनंद कृष्ण से अलग है। जब कृष्ण में आनंद कहें, भक्ति में आनंद कहें, तो सिद्धांत का ठीक तरह से जो इस प्रकार से कहता है भक्ति में आनंद है, कृष्ण में आनंद है, इसका मतलब वो सिद्धांत को समझता नहीं है। भक्ति में आनंद नहीं है, कृष्ण में आनंद नहीं है, कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप है। रसो वही सह वेद कहती है, रसो वही सह, कृष्ण आनंद के स्वरूप है, न कि कृष्ण में आनंद है। कृष्ण आनंद, कृष्ण अलग हो गए आनंद से। वैसे ही भक्ति जो है केवल आनंद कंद, केवल आनंद से परिपूरित है भक्ति, न कि भक्ति में आनंद है। तो वैसे ही महाराज पृथु जो हैं उनमें सब प्रकार से चारु थे, सुंदर थे। अब वाणी जो बोलने वाले हैं वो वाणी भी सुंदर था, उसका यहां पर अलंकारिक भाषा में चित्र पदम अलंकार से युक्त था उनका वाणी। चित्र पदम सुलक्षणम, जब बोल रहे थे तो बिल्कुल अस्पष्ट था, यानी सिंपल था, जो सब लोग समझ सके। ये शिक्षा लेनी चाहिए जब हम किसी से प्रचार करते हैं, कथा कहते हैं, तो इन सब का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब कथा कहने जाते हैं लंबा लंबा बाल रहेंगे, क्या कथा का असर पड़ेगा? बाल सेविंग करा लेना चाहिए, नहा करके उर्द्वपुर तिलक करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। देखने से फर्स्ट इंप्रेशन, देखने से व्यक्ति थोड़ा मोहित हो जाए। चतुष कुमार लोग कहते बाहरी आकृति। उसके बाद यदि बोलना है भगवान के संबंध में तो जो कॉन्टैक्ट होना चाहिए भगवान से होना चाहिए, उस विषय वस्तु से, व्यक्ति से नहीं। हम कथा कह रहे हैं तो हम कथा कर रहे हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए, न कि आप लोगों के प्रसन्नता के लिए। यदि भगवान प्रसन्न होंगे तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे और आप लोग प्रसन्न हो जाओगे। सिद्धांत ही है ना, पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे सब हरा भरा हो जाएगा। तो जब कथा जो वक्ता है वो किसी को प्लीज करने के लिए कथा ना कहे, पहले नंबर वो एकमात्र कथा कहे तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए उसका जो संबंध होना चाहिए किससे होना चाहिए? भगवान से होना चाहिए, उस विषय वस्तु से होनी चाहिए संबंध। और जब भगवान से संबंध करना होगा तो संबंध कैसा रहना चाहिए? बड़ा प्रेम से। भगवान प्रेम के पुजारी हैं, तो उनका पूजा करना है तो कैसे करना चाहिए? प्रेम से। तो स्वाभाविक है यह बात आएगा सुलक्षणम कथा में, बिल्कुल अस्पष्ट बाधिता होना चाहिए। यदि किसी को प्रसन्न करने के लिए कथा कहेंगे तो हम वह कहना चाहेंगे इससे वो प्रसन्न हो, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कहेंगे तो हम वही कहेंगे जो कृष्ण कहना चाहेंगे। समझ गए ना अंतर? ऐसे भी कहा जाता है सर्वेंट ऑफ एवरीवन इज सर्वेंट ऑफ नो वन, एंड इफ यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन यू विल एंड अप प्लीजिंग नोबडी। द बेस्ट टू प्लीज कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो सीखना चाहिए चित्र पदम स्लष्टम, स्पष्ट वादी हुआ। प्रभुपाद जी देखिए बिल्कुल सिंपल भाषा में सब लिखे हैं और बोले हैं। उनका अंग्रेजी देखिए, बोलने का शैली देखिए कितना सुंदर है। उनका ग्रंथ बिल्कुल स्पष्ट है, कोई समझ सकता है, विद्वान भी समझ सकता है और एक मूर्ख भी समझ सकता है। मृष्टम, मृष्टम मधुर वाणी होना चाहिए, बोला जाए तो मृदु वचन से उसका असर पड़ता है। यदि कोई रोगी है और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर यदि प्रेम से उससे पूछता है भाई क्या बात है, सब कुछ ठीक है, क्या तकलीफ है बताइए आपको, उसका बल्कि हाथ पकड़ करके अपने हाथ रखे तब ठीक है ना बताइए, तब देखिए रोगी का रोग कैसा रहता है। और कोई आ गया और डॉक्टर साहब थोड़ा नरम नहीं गरम दिमाग के हैं, तू क्यों मेरे पास आया, तुम्हें क्या तकलीफ है, ज्यादा तुम खा लिया है, है? तुम ऐसा करता है ऐसा करता है, वो डांटना शुरू करे डॉक्टर तो क्या हो जाएगा, रोग और बढ़ जाएगा। ये होगा ना, होगा ना ये बात है? लेकिन प्रेम से बात करें तो अपने आप 50% रोग खत्म हो जाएगा। वैसे ही हम यदि किसी से वार्ता करते हैं, प्रवचन करते हैं, बात करते हैं तो बड़ा मधुर स्वर में बात करना चाहिए। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, मधुर मिष्टम और गूढ़म अविलकवम। गूढ़म, गूढ़म मतलब सार्थक बात, व्यर्थ का बात नहीं बोलना चाहिए। भागवत का श्लोक यहां पर है तो चले गए दिल्ली और कलकत्ता, वहां बोलकर गए, निज विवेक का सब बात बोल दिए, वो सब नहीं बोलना, वही बोले जो सार्थक हो, जो भागवत का बात हो, सार्थक बात कहना चाहिए। और विक्लवम, विक्लवम मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यदि बोले तो सुनने वाला देख सकता है अंदर क्या है बाहर क्या है, अस्पष्ट वक्ता। हम लोगों में गुण नहीं है लेकिन महाराज पृथु कृपा से हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, ये महाराज पृथु का गुण, वो निष्पक्ष वक्ता थे। सर्वेशम उपकारार्थम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम बात कहते हैं, प्रवचन करते हैं, तो सर्वेशम उपकारार्थम, सबके उपकार के लिए बात होना चाहिए, कि मेरे उपकार के लिए है, दो ज्यादा माला पड़ेगा, 10 बार लोग प्रणाम करेंगे, कुछ दक्षिणा ही मिलेगा, इसके लिए कथा नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? सर्वेशम उपकारार्थम, सबके कल्याण के लिए। तदा अनुवत यम, मानो जो उनके जीवन में था उसी का वे अनुवाद कर रहे थे, उन लोगों के साथ में बतला रहे थे, जो वे करते थे उसी बात को दोहरा रहे थे। इस प्रकार से जब ये तो उनके कहने के, बताने के, एड्रेस करने के शैली का अब तक से वर्णन सुत गोस्वामी यहां पर किए हैं, अब बात क्या कह रहे थे, श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, राजो वाच सभ्याम श्रुतु भद्रम वह साधो इहागत ससु जिज्ञासु भीर्धर्म आवेद्यम आवे आवेद्यम स्वमनीषितम। अब यहां पर सभ्या, हे सभा में उपस्थित जितने सज्जन वृंद हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, सब लोगों को संबोधित करते हैं सभ्या, सब लोगों को, सभा में उपस्थित जितने सज्जन लोग हैं, कहते हैं श्रोतु भद्रम वह, भद्रम वह, आप सब लोगों का कल्याण हो, क्योंकि आप लोग हरि कथा सुनने के लिए आए हैं, जो हरि कथा सुनने आता है उसका कल्याण होता है। श्रोताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, पुण्य श्रवण कीर्तनम, श्रवण कीर्तन भगवान का जो होता है कैसा होता है, पुण्य होता है, जो कहता है, जो सुनता है, जिस स्थान पर कही जाती है, प्रश्न करने वाला, उत्तर देने वाला, सबका कल्याण होता है। इसलिए यहां पर एड्रेस कर रहे हैं सभ्या, हे देवियों और सज्जनों, आजकल के भाषा में, पहले सज्जन कहने से काम चल जाता था लेकिन आजकल देवियों और सज्जनों कहना पड़ा। श्रोता कृपया सुने जो मैं कहने जा रहा हूं, कभी भद्रम वह, आप सबका कल्याण हो। साधवो यह इहागता, इह आगता, यहां पर आप लोग आए हैं, साधवो जो वहां पर आए थे उन लोग कहते हैं आप लोग कैसे हैं, साधु हैं, सज्जन हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य बतलाए हैं कि जो राजा होता है कोई जरूरी नहीं कि सब लोग उसका अनुमोदन ही करने वाले हैं, उसके बैरी भी होते हैं, ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं, लेकिन जो लोग वहां पर आए थे वो लोग कम से कम साधु थे, सज्जन थे। इसलिए उन लोगों को एड्रेस करते हुए कि हे साधु जन, हे सज्जन लोग, आप लोग यहां पर आए हैं, आपका स्वागत है, आप लोगों का कल्याण हो। जो आप लोग यहां पर पधारे हैं, अब महाराज पृथु अपना प्रार्थना सुना रहे हैं, अपना प्रार्थना सुना रहे हैं, कहते हैं आवेद्यम, मैं अपना आवेदन आप लोगों से कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, उस निवेदन को आप लोग सुने। प्रश्न उठता है कि जो कहना चाहते हैं वे क्यों कहना चाहते हैं, उसका उत्तर देते हैं कि सत्सु जिज्ञासु भीर धर्म आवेद्यम स्वमनीषितम। अपना जो स्वमनीषितम जो निश्चय किए कुछ काम करने के लिए, सत्सु सत्सु मतलब साधुओं के बीच में या भद्र पुरुषों के बीच में कह देना चाहिए। हम यदि कुछ करना चाहते हैं और उसको साधुओं के बीच में करें कहेंगे कि मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं नाहदीदास का गला काटना चाहता हूं उदाहरण के लिए, तो साधु लोग क्या कहेंगे, अरे पाप है ऐसा मत करो, हैं सिखाएंगे ना पाप है ऐसा मत करो। लेकिन यदि कहना चाहें कि नहीं आज मैं जा रहा हूं, मेरा तन शुरू हो रहा है, नाहदीदास के चरण पकड़ करके उनका पैर धोऊंगा, लेकिन एक गीता जरूर उनको दे करके आऊंगा, ये भी कह सकते हैं ना, तो साधु लोग कहेंगे साधुवाद, धन्यवाद धन्यवाद, साधुवाद देंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। दूसरा हो गया। तीसरा, जो हम कहे हैं करने के लिए नहीं करेंगे तो नाक कट जाएगी ना, सबके सामने तुम्हें कह दिया, डिंग हांक दिया कि मैं ये करूंगा नहीं करूंगा, तो बल मिलता है, इंतुजियाजी मिलती है, उत्साह वर्धन होता है ये बात कहने से। कैसे? सत्सु जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब इनक्विजिटिव, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहता है, भगवान का सेवा करना चाहता है, उसको साधु पुरुषों के बीच में आवेद्य अपना बात कह देना चाहिए। गलत होगा तो साधु पुरुष सुधारेंगे, और अच्छा होगा तो साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद देंगे, जिसके चलते हमारा काम अच्छा होगा। जो निश्चय किए हैं उन लोगों को ऐसा कह देना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। तो शास्त्र का यहां पर प्रमाण दे रहे हैं कि मैं केवल बकवास नहीं करने जा रहा हूं, मैं जो निश्चय किया हूं वह कहने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। यदि आप लोग सोचे कि अनुचित है तो आप लोग जरूर बताइएगा, और यदि उचित है तो हमारा सहयोग कीजिएगा, यह बात कहते हैं। अब जो कहने जा रहे हैं अब कह रहे हैं, पहले तो वर्णन किए शुद्ध गोस्वामी जो कैसे कहे, उनका शैली का वर्णन, क्या कहने जा रहे हैं शास्त्र का प्रमाण देकर के, अब क्या कह रहे हैं वह बात श्लोक 22 में। अहम दंडधरो राजा प्रजानाम इह जोजितः रक्षिता वृतितः स्वेषु सेतुषु अस्थापितक पृथक। बड़ा सुंदर बात यहां पर, अहम दंडधरो राजा, हमको इस श्लोक में प्रजाजनों का पालक बनाया गया है, बनाया गया है, मैं राजा हूं ये नहीं कह रहे हैं, मुझे राजा बनाया गया है, क्योंकि जो राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसे नरदेव कहा जाता है, नर के रूप में भगवान आते हैं, तो जो राजा हुआ वो भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान की उस पर कृपा है तब वह राजा हुआ, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, उस पर भगवान की कृपा हुई है तब वह प्राइम मिनिस्टर हो पाया है, नहीं तो दूसरा भी हो सकता था। तो कम से कम इसको स्वीकार करना चाहिए, महाराज पृथु स्वीकार कर दे स्वयं भगवान, फिर भी उदाहरण अहम दंड धरो राजा, मैं राज दंड धारण करने वाला राजा बनाया गया हूं, प्रजानाम इह योजितः प्रजानाम, प्रजा का अर्थ होता है प्रजायते इति प्रजा, प्रजा प्रकृष्ट रूपेण जायते इति प्रजा, प्रजायते इति प्रजा और प्रकृष्ट रूपेण जायते इति प्रजा, प्र मतलब अच्छी तरह से, जायते में जन्म ले लिया है, जो जन्म ले चुका है वह प्रजा कहलाता है। जय श्री श्री राधारमण बिहारी की जय। यहां पर महाराज पृथु कहते हैं कि मुझे राजा बनाया गया है, बट पावर शुड बी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। द पावर विच हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट द रियल पावर। हम लोग पावर चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते हैं। पावर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिना उत्तरदायित्व के उस शक्ति का कोई फायदा नहीं है। तो कहते मुझे राजा बनाया गया है लेकिन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रजा नाम इह, इह मतलब इस संसार में जो लोग जन्म ले चुके हैं उनको क्या करना है? जो जीता पाला काम करना है, उनको लगाना है। जो जीता, जैसे हल में बैल को जोतते हैं ना, को जोत दो उसमें बैल को, जो जीता उनको लगाना है। कहां लगाना है? भगवत भक्ति में। राजा का पहला काम रक्षिताम, उनका रक्षा करना। राजा का काम है प्रजा का रक्षा करना। प्रजा कौन है? जो जन्म ले चुका है। लेकिन आजकल के राजा को देखा जाए तो ये प्रजा किसको मानते हैं? जो उनके चमचे हैं, इतना ही ना। सबको प्रजा नहीं मानते हैं, जो चमचे हैं वही। जो कांग्रेस पार्टी का है वो तो प्रजा है, जो अन्य पार्टी का है, हाँ नाम के लिए नहीं करूंगा तो कुछ कहेंगे लोग, इसलिए यही करते हैं ना। प्रजा का मतलब मनुष्य तो है ही, यहां तक कि पशु पक्षी वृक्ष लता ये सब के सब प्रजा है। दुख की बात है कि आजकल के राजा लोग इस बात को नहीं जानते। वे लोग मनुष्य का तो रक्षा करने का प्रयास करते हैं लेकिन पशुओं के लिए फर्स्ट क्लास कसाई खाना खोलते हैं। वृक्ष काटे जाते हैं, जंगल काटे जाते हैं, और जब पाप बढ़ने लगता है तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग होने लगी। अरे हीट तो मालूम होगा ही, आज नहीं तो कल, जब धर्म का पालन नहीं करोगे तो हीट तो मालूम होगा। अब हीट मालूम हो रहा है। अब देखिए नवंबर का महीना है, थोड़ा सा ठंडा पड़ना चाहिए, वर्षा हो रहा है। ये वर्षा होने का महीना है, वर्षा हो रहा है, कहते ग्लोबल वार्मिंग। अरे ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? यदि कोई व्यक्ति ग्लोबल वार्मिंग से बचना चाहे तो आज के आज राजा को चाहिए सब कसाई खाना बंद कराएं। पहला काम, पहला फर्स्ट स्टेप लें, कसाई खाना बंद कराएं, गर्भपात जो है उसको बंद कराओ, वृक्षों को काटना ये बंद कराओ, जो भी जन्म लिया है उसका रक्षा करो। रक्षिता वृतिदह, रक्षा करो। कैसे? वृतिदह, उनको वृति दे करके। आज लोग चिल्लाते हैं नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। वृतिदह मतलब कि वर्णाश्रम धर्म का स्थापना कर उनके वर्ण और आश्रम के अनुसार उनको कार्य दिया जाए। चातुर्वर्णमया शिष्ट गुण कर्माओं विभाग स, उनके गुण और कर्म के अनुसार उन लोगों को उन कार्यों में लगाना ही राजा का काम है। स्वेसु सेतुसु अस्थापितम, सेतुसु, स्वेसु मतलब अपने और प्रजा के बीच में क्या करना है? सेतुसु, सेतु का मतलब होता है पुल। पुल का काम क्या है? एक पार से दूसरे पार जाना। तो राजा का काम है सेतुसु अस्थापिताम पृथक, सेतु निर्माण कराएं। सेतु मतलब ब्रिज नहीं, संबंध स्थापित कराएं। किससे? भगवान से, पृथक अलग अलग। यानी मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का, ब्रह्मचारियों का, गृहस्थों को, वानप्रस्थ सन्यासी, सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र है और सब कार्य क्षेत्र का लक्ष्य है भगवान से संबंध स्थापित करना। और यह किसका काम है? राजा का हमें देखना कि सब में सेतु है, भगवान से संबंध सबका है, यह भी राजा का काम है। तो प्रजाओं का शासन करना, उनका रक्षा करना, उनकी आजीविका का प्रबंध करना, ता उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रहने के लिए मुझे राजा बनाया गया है, ये राजा का धर्म है, यह राजा का असली धर्म है। कहते यदि मैं अपना काम करूं, राजा का काम करूं, तो मुझे भी उसी गति की प्राप्ति होगी जो कि ब्रह्मर्षियों को होती है, ऋषियों को होती है, साधु महात्माओं को होती है। मैं प्रायः कहता हूं कि भगवान के प्रसन्नता के लिए कोई भी सेवा है, यदि भगवान के प्रसन्नता के लिए है और गुरु के द्वारा अनुमोदित है, चाहे वो डीटी वर्शिप हो, चाहे वो लाइफ मेंबरशिप हो, चाहे वो हरि नाम हो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, कांग्रेगेशन, कोई भी यदि हो, वह जो सेवा है हम लोगों को भगवान के धाम ले जा सकता है। कभी कभी भक्तों में इस प्रकार से मिथ उत्पन्न हो जाता है, भ्रम उत्पन्न होता है, ये लाइफ मेंबरशिप ये हम लोगों काम नहीं है, लाइफ मेंबर बनना हमारा काम नहीं है, हम तो भक्त बने हैं, भक्ति शास्त्री करेंगे, या तो पंडा बनेंगे या तो डंडा मारेंगे, पंडा बनकर डंडा मारेंगे, यही करेंगे ना, भक्ति शास्त्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो ठीक है, लेकिन यह कह देना कि लाइफ मेंबरशिप ठीक नहीं है, ये अपराध है। वास्तव में जो लाइफ मेंबर बनाता है, जो लाइफ मेंबरशिप प्रीचर है, यदि वह सेवा यथावत करे जैसे प्रभुपाद जी चाहते थे, तो लाइफ मेंबर सेवा के द्वारा वह व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि वो डीटी वर्शिप नहीं करेगा, कि वो लाइफ मेंबर बनाए भगवान धाम नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहां पर महाराज पृथु कह रहे हैं कि यदि यथावत पालन कर मैं करूं, और इस कार्य को करने में आप लोगों की प्रीति चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, यदि ऐसा हम करें तो जो वेदवादियों का गति होता है, और वेदवादियों का गति वो है तुष्यति दृष्ट, यस्य तुष्यति दृष्ट दृक्, भगवान को नियति का दृष्टा जो है, भगवान जो है उनको तुष्ट करना, तो राजा भी अपने कर्म से भगवान को तुष्ट कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है, जिस प्रकार से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी अपने कर्म से। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, बेटर टू डू योर ड्यूटी इम्परफेक्टली देन ट्राइंग टू डू समबडी एल्स ड्यूटी परफेक्टली, अपना जो काम है वही करो, अच्छा है। परकर्म भयावह, लेकिन यदि राजा ऐसा नहीं करता है, और राजा केवल क्या करता है, प्रजा से केवल कर लेकर के मजा मारता है, तो उस गधे का क्या होता है, वो बात यहां पर महाराज पृथु श्लोक 24 में कहते हैं, यह उद्धरेत करम राजम राजा प्रजा धर्मेशु अशिक्षयन प्रजानाम समलम भुक्ते भंगम च स जहाति स। कहते हैं जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे विभिन्न प्रकार का टैक्स लाद लाद करके कर वसूल करता है और उसे मया मारता है, तो वह केवल प्रजा से कर ही नहीं ले रहा है, बल्कि प्रजा के पाप का भी वह भागी होगा, और उस पाप से अपने स्वर्ग से हाथ धो डालेगा। तो जो टेम्पल का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, टेम्पल कमांडर है, भक्त लीडर है, यदि अपना कर्म नहीं करेगा, यदि कोई भक्त गलती करता है, तो समझना चाहिए कि उस भक्त के गलती के कर्म का 1/6 जो भाग है टेम्पल कमांडर, वाइस प्रेसिडेंट और सबको लेना पड़ेगा, जो लीडर है चाहे हेड पुजारी हैं, जो डिपार्टमेंट, सबको लेना पड़ेगा। ये नहीं कि गलती वह किया है तो वही भोगेगा, नहीं। महाराज पृथ्वी कहते हैं केवल कर लेते हो, काम कराते हो केवल, और भगवान, इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, हम लोग सुने थे इस बात को, हम करते भी थे, कि जो टेम्पल कमांडर है, जो टेम्पल प्रेसिडेंट, जो डिपार्टमेंट हेड है, वो डिपार्टमेंट हेड केवल सेवा ही नहीं भक्तों का ले, बल्कि ये अभी देखे कि वो भक्त सोलहमाला जप कर रहा है कि नहीं, मंगला आरती आ रहा है कि नहीं, प्रवचन सुन रहा है कि नहीं, ये सब भी करना डिपार्टमेंट हेड का काम है। और नहीं यदि करता है तो अपने स्वर्गों से हाथ धो डालेगा, खत्म हो जाएगा उसका ये सब। इस संबंध में एक सुंदर मुझे कथा याद आ रही है, वह यमुनाचार्य का कथा है। यमुनाचार्य का नाम आप लोग सुने हैं ना, रामानुजाचार्य के वे गुरु हुआ करते थे। यमुनाचार्य के दादाजी का नाम था नाथ मुनि, वे बड़े महान वैष्णव थे, और यमुनाचार्य के पिता का नाम था ईश्वर मुनि। यमुनाचार्य अपने बाप मां के एकलौते पुत्र थे। इनफैक्ट एक बार यमुनाचार्य के माता पिता गए थे, साउथ इंडिया के थे, ये गए थे वृंदावन। वृंदावन में विभिन्न तीर्थ स्थानों का दर्शन किए और यमुना जी का दर्शन किए। जब यमुना जी का दर्शन किए तो उन्हें बड़ा यमुना जी अच्छी लगी, यमुना का गुणगान सुने और यमुना जी से प्रार्थना किए कि हमें कोई संतान होगा तो उसका नाम हम यमुना रखेंगे। तो कालांतर में ईश्वर मुनि को संतान हुए तो उनका नाम उन्होंने रखा यमुना, और बाद में चार्य थे यमुनाचार्य कहलाए। यमुनाचार्य के पिताजी का देहांत हो गया बचपन में, उनके पिताजी बड़े सुंदर थे। जब उनका देहांत हो गया तो उनके पिता जो थे नाथ मुनि, उन्हें वैराग उत्पन्न हुआ और वे घर द्वार छोड़ करके संन्यास ले लिए। तो उनकी दादी रह गई और उनकी मां रह गई। आप हमारे तरफ देखो, उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो ना, हरिदास आपके प्रवचन में बड़ा पावर है भाई, आप बोलते सर उधर देखते हैं, हमारे तरफ कोई नहीं देखता है। आप जब प्रवचन करते हो ना, हे माता जी इधर आओ, तो सर उधर देखते हैं, इधर कोई देखता नहीं है, पावर है ना उनमें, पावर नहीं है वो टीवी में पावर है, वो क्या नाम, वो कैमरा में पावर है, किसी का चेहरा नहीं आएगा इसलिए इधर सुनो आप लोग। मैं क्या बोल रहा था, दादी और मां बेचारी रह गई थी, वे लोग उनका पालन कर रही थी। बचपन में ही वे गुरु आश्रम में गए, उनके गुरु का नाम था भाष्याचार्य। उस समय जो पांड्या राज के, जो साउथ इंडिया के जो राजा थे, उनके राज दरबार में एक पंडित थे, प्रगाढ़ पंडित थे, राज पंडित, उनका नाम था कोलाहल पंडित। कोलाहल मतलब न्यूसेंस होता है, अच्छा नाम था उनका, कोलाहल पंडित, वास्तव में वो न्यूसेंस थे। वो तर्क में बड़े निपुण थे, तर्क करते करते किसी को भी हरा सकते थे, और राजा के बड़े चहेते हो गए थे। तो राजा से उन्होंने एक ऑर्डर पास करा दिया था कि कोई भी उनके साथ तर्क कर सकता है, लेकिन यो तर्क करने में यदि हार जाता है तो ईयरली 1000 रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको, कोलाहल पंडित। तो राजा पे करना ही है, लेकिन पे करना पड़ेगा टैक्स कोलाहल पंडित को भी। तो किसी समय भाष्याचार्य भी कोलाहल पंडित से तर्क में हार गए थे, तो नियम के अनुसार उनको भी टैक्स पे करना था हर एक साल। 2 साल तक वे टैक्स पे नहीं किए थे। एक दिन कोलाहल पंडित के कुछ चेले लोग आए टैक्स कलेक्ट करने के लिए। उस दिन भाष्याचार्य अपने आश्रम में नहीं थे और उनके शिष्य भी नहीं थे, एकमात्र रह गए थे तो जमुनाचार्य, अकेले वही थे और सब चले गए थे। तो कोलाहल पंडित के जो अनुयायी आए, तो कोलाहल पंडित जैसे थे अनुयायी भी वैसे ही थे। उन्हें बहुत अहंकार था, घमंड था, उनके अनुयायियों में घमंड था। आते ही आते यमुनाचार्य से वे लोग पूछेंगे, तुम्हारा गुरु कहां चला गया, आश्रम क्यों खाली पड़ा हुआ है, डांट फटकार कर बोलने लगे। तो यमुनाचार्य कहेंगे, भाई बताओ बात क्या है, आप लोग गुस्से में क्यों हो, पानी चाहिए तो मैं पानी पिलाता हूं आप लोगों को, शांत रहो, बात क्या है। क्योंकि यमुनाचार्य बड़े सम्य वैष्णव भक्त थे, मृदुभाषी थे। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा गुरु चोर है, हैं? दो साल से हमारे गुरु को टैक्स पे नहीं किया है, हम आए हुए हैं टैक्स लेने के लिए। कहा, टैक्स? क्या टैक्स? कहा, तुम्हें मालूम कुछ भी नहीं है, हमारे जो गुरु हैं गुलाल पंडित, एक बार तुम्हारे गुरु भाषाचार्य तर्क किए थे, तर्क में हार गए थे, और नियम के अनुसार उनको सलीना टैक्स पे करना है, दो साल से नहीं पे किए हैं। कहा कि टैक्स में हार गए थे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, तुम जा करके अपने गुरु से कह देना। बड़े मृदु भाव में बोले, गुरु से बोल देना कि अरे गुरु को हराना तो दूर की बात है, मैं उनका एक यूजलेस डिसाइपल हूं, निकम्मा शिष्य हूं, यदि मुझको यदि तर्क में हरा देंगे तो मैं गुरु के दो साल का क्या, जितना चाहे उतना टैक्स मैं पे करूंगा, जाकर अपने गुरु जी से कह देना। तो ये लोगों को बहुत गुस्सा हुआ और आकर के गुरु जी से बोले, गुरु को भी बड़ा गुस्सा हुआ, गुरु राजा को बोले। राजा ने सोचा कि शायद मजाक करता होगा, छोटा बच्चा है, 12 साल का बच्चा क्या टैक्स वो तर्क करेगा, और वो भी आपसे, आप चिंता मत कीजिए, मैं शांत कर दूंगा, देखता हूं। तो राजा अपना मंत्री भेजे, यमुनाचार्य ने कहा, हां मैंने चैलेंज किया है और मैं तर्क करूंगा कोलाहल पंडित से, लेकिन एक शर्त है, जब मैं तर्क करने के लिए वहां पर जाऊंगा तो आप राजा से कह दीजिएगा कि राजा हमारे लिए पालकिन भेजेंगे, डोली, क्योंकि पहले जमाने में जो राज पंडित होते थे वो डोली में आया करते थे, पालकिन में आते थे। तो तर्क करने में जा रहा हूं तो आखिर तर्क करने के लिए लेवल ए बराबर होना चाहिए ना, भले एज दूसरा हो लेकिन लेवल बराबर होना चाहिए और साथ में ले जाने वाले आने चाहिए। तो राजा के दूत भी गए, राजा से बात बताए, तो तर्क का दिन स्थापित किया गया कि इस दिन तर्क होगा। अब यह बात सर्वत्र फैल गई, गुरु भाष्याचार्य भी आ गए, जब उन्होंने सुना तो कहे कि यमुनाचार्य आप व्यर्थ में उस कोलाहल पंडित से तर्क के लिए झगड़ा मोल ले लियो, बदमाश आदमी है, उसे तर्क करने के, वो चीटर है, आप कितना भी सही रहोगे वो गलत साबित करेगा, आप क्यों तर्क करने जा रहे हो, अभी भी आप इस मंतव्य को त्याग दो, तर्क मत करो। यमुनाचार्य का, गुरुदेव आप निश्चिंत रहें, आप केवल हमें कृपा बरसाएं, आप अपना कृपा दें और देखिए मैं कैसे इस कोलाहल को प्राप्त करता हूं, आपके कृपा से मैं कुछ भी कर सकता हूं। समय आया, राजा के यहां से सोने की पालकी आई, 200-400 सैनिक लोग साथ में थे, पूरा राजकीय व्यवस्था किया गया। अब आए वहां पर, बहुत विद्वत लोग आए थे, साधु महात्मा आए थे, बहुत शास्त्र के ज्ञाता, बहुत प्रजा, क्योंकि 12 साल का लड़का कोलाहल पंडित को, जो दिग्विजय जैसे थे, उन पंडित को चैलेंज किया है, तो कोलाहल पंडित से बहुत लोग नफरत करते थे। कितने लोग तो दयालु, गरीब छोटा बच्चा क्या करेगा, कुछ कहते कि नहीं भगवान हमारा भी बुद्धि इस बच्चे को दे दीजिए, इस कोलाहल पंडित को तो इस बार जरूर हारना चाहिए, सब लोग प्रार्थना करने लगे। अब राजा रानी बैठे थे, राजा ने कहा रानी से, ये छोटा बच्चा क्या कर सकता है कोलाहल पंडित का, ये देखने में बच्चा है, ये क्या कर सकता है कोलाहल पंडित का, ये तो व्यर्थ में अपना जीवन गंवा रहा है, इसे तर्क नहीं करना चाहिए, ये जरूर हार जाएगा। तो रानी ने कहा कि नहीं महाराज, हमें नहीं लगता है कि यह हारेगा। अलबंदारू अलबंदारू, अलबंदारू मतलब विजयी, ये जरूर विजयी होगा, जरूर विजयी होगा, जरूर विजयी होगा। तो राजा रानी में तर्क हो गया, अरे तर्क तो होना था जमुना चार्जर कोलाहल में, ये हो गया राजा रानी में। तब राजा रानी में तर्क हो गया, तो राजा ने कहा कि तर्क, रानी का तर्क करने से क्या फायदा, हम लोगों को कुछ बाजी लगाना चाहिए तर्क में, ये जीत गया तब क्या होगा। तो रानी ने कहा कि यदि वो हार जाएगा तो आपके जितनी पटरानियां हैं उनकी मैं दासी बन जाऊंगी। और राजा ने कहा आपने इतना बड़ा दाव लगा दिया, तो मैं भी राजा हूं, आपका पति हूं, तो ऐसा ही कुछ दाव लगाना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं भी दाव लगाता हूं, यदि यह बालक जीत जाएगा तो मैं अपने राज का 50% राज इसको दे दूंगा। अब दाव लग गया, राजा रानी का दाव लग गया, किसके लिए, जमुनाचार्य और कोलाहल पंडित के तर्क के लिए। अब जब आए दोनों बैठे, जमुनाचार्य बेचारे नम्र भाव से गुरु भगवान को याद कर रहे थे, और कोलाहल पंडित तो बड़े मन में बड़ा पंडित था, विद्वान पंडित, वो अलंकारिक भाषा में दो चार पांच प्रश्न किया और सभी प्रश्नों का तुरंत उत्तर दे दिए जमुनाचार्य, जितना प्रश्न किया उतना उत्तर दे दिए। जमुनाचार्य कहते हैं कि हे महान विद्वान पंडित जी, आपका इतना बड़ा नाम है, आपसे सब लोग डरते हैं, क्या आप मुझे बच्चा समझ करके एबीसीडी का प्रश्न पूछ रहे हैं? अरे प्रश्न करो, अच्छा प्रश्न करो, इसे आप हरा सकते हो, ये तो एबीसीडी का, लेकिन ये प्रश्न एबीसीडी नहीं था, ये पीएचडी का प्रश्न था, मास्टर डिग्री का कोर्स था, सब पंडित लोग कोई बता नहीं सकता था, लेकिन यमुनाचार्य तुरंत फटाफट। अब उसके पास कोई प्रश्न नहीं रह गया था पूछने के लिए, तब कोलाहल पंडित ने कहा ठीक है, तुम समझते हो कि एबीसीडी प्रश्न है, तब तुम ही कुछ प्रश्न करो, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का खंडन करूंगा। तो इसने तीन प्रश्न किया, यमुनाचार्य ने तीन प्रश्न किया। जमुनाचार्य ने कहा, पहला प्रश्न कहा कि आप खंडित वो बात कह रहे थे और कहे हमारे बात को आप नकारिए या खंडित कीजिए। पहला प्रश्न किए कि आपकी मां बांझ नहीं है, आपकी मां बांझ नहीं है, इसको खंडित करना था। किसको? कोलाहल पंडित को। कोलाहल सर, मैं तो अपनी मां का बेटा हूं, तो मेरी मां बांझ कैसे हो सकती है? बांझ का मतलब हुआ जिसे कोई बच्चा नहीं हो, तो मैं तो अपने मां का बेटा हूं, तो मेरी मां बांझ कैसे हो सकती है? तो बेचारा चुप हो गया। अब कुछ यमुनाचार्य कुछ समय शांत थे, कहे ठीक है, आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, इसको खंडित नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है मैं दूसरा बात कह रहा हूं, उसको आप खंडित कीजिए। हमारा राजा धर्मात्मा है, खंडित कीजिए, यानी कहिए कि धर्मात्मा नहीं है, यही ना। तो इसे अरे कैसे कह सकता हूं कि धर्मात्मा नहीं है, ये कहूंगा तो मेरा गला गया काम से, ये कैसे कह सकता हूं? चुप। अब गुस्सा खूब आ रहा था उसे, लेकिन अब करे क्या बेचारा, कुछ था नहीं। तीसरा प्रश्न किया, कहा कि महारानी पतिव्रता हैं, मर गया, अब क्या करूं कि महारानी बेस्या है, ये कहूं? जब इतना हुआ तो उसको रहा ने गुस्सा हुआ, खूब गुस्सा के चलते खूब जोर से डांटा, चिल्लाना शुरू किया है? और चैलेंज किया कि तुम पागल है, ये बेतुक तुम बात क्यों कर रहे हो, क्या हमारे महाराज धर्मात्मा नहीं है, क्या हमारी महारानी पतिव्रता नहीं है? तुम इसको खंडित करो। अब वहां खूब झगड़ा होने लगा, जो बहुत लोग जो इसके चेले लोग थे कहा गुरुजी अच्छा कहा आपने कहा, और जो यमुनाचार्य के अनुवाई थे या उन पर उनका नहीं नहीं या पंडित जी हार गए हैं अब इनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए अब इनका हाँ नहीं वो वेगिंग था वहां पर कि जो हार जाएगा फांसी पर चढ़ाया जाएगा ये बात था ऐसे कुछ था ऐसे कुछ हारने के बाद या जो भी होगा तब वो करना चाहिए। अब खूब झगड़ा जब दोनों साइड में हो रहा था तो जमुनाचार्य राम जी कहे शांत रहिए आप लोग शांत रहिए शांत रहिए। पंडित महोदय ने अच्छा प्रश्न किया है अब वे नहीं कर पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं खंडित करूं इस बात को तो ठीक है मैं खंडित करता हूं। अब राजा रानी सब देख रहे हैं सब आश्चर्यचकित हैं अब कैसी बात होगा। तब पहला प्रश्न था पहला बात क्या था आपकी मां बांझ नहीं है यही बात था ना तो ये कहना था कि आपकी मां बांझ है ये खंडन करना हुआ तो कहा कि मनुस्मृति के अनुसार जिसको केवल एक संतान हो वह स्त्री बांझ कहलाती है जिसको केवल एक बच्चा हो वह स्त्री बांझ कहलाती है मनुस्मृति के अनुसार। आजकल कहने पर गोली चल जाएगी है आजकल सही बात नहीं है लेकिन मनुस्मृति में है एक पुत्रो ही अपुत्रेण लोकवादात मनुस्मृति 961 मनुस्मृति में कहा एक पुत्रो ही मतलब निश्चित ही अपुत्रो लोकवादात लोगों में ऐसा मान्यता है ऐसा कहा जाता है कि जिसको केवल एक संतान है वह संतान विहीन के समान है यानी बांझ है तो कह दिए कि तुम्हारी मां जो है वो बांझ है रिफ्यूट कर दिए। दूसरा प्रश्न दूसरा बात था कि राजा धर्मात्मा है तो कहना था कि राजा धर्मात्मा नहीं है कैसा है दुरात्मा है यही कहने का मतलब ना तो कहते हैं चूंकि राजा प्रजा का पालक है अतः प्रजा के धर्म और अधर्म का छठा भाग प्राप्त होता है सर्वतो धर्म षड भागो राज्यो भवति रक्षत अधर्मापि षड भागो भवतस्य ही अरक्षत मनुस्मृति 8304 मनुस्मृति के अनुसार जो राजा होता है वो प्रजा के धर्म और अधर्म दोनों का छठा भागीदार एक छठा भागीदार छठा भागीदार होता है। तो जो धर्म किए हैं ये तो कह नहीं सकते हैं कि पूरी प्रजा धार्मिक ही है अधार्मिक भी होगी तो जो प्रजा धार्मिक है और उसका छठा भाग राजा लिया तो भले ही थोड़ा ही अधार्मिक है लेकिन अधार्मिक है मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% कितना है पूरा सफेद चादर हो और एक काला डॉट उसमें आ जाए तो लोग सफेद चादर नहीं देखते हैं क्या देखते हैं काला डॉट देखते हैं। कोई कह रहे हैं कि राजा धर्मात्मा है इसको रिफ्यूट करना था कि राजा धर्मात्मा नहीं है प्रजा के पापों का छठा भाग लिए हैं तो यह कह देना कि राजा धर्मात्मा है ये सही नहीं है। तीसरा बात था कि महारानी पतिव्रता है तो उसके लिए कहते हैं कि जो राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है और राजा के शरीर में 8 देवता गण निवास करते हैं अग्नि वायु सूर्य चंद्र जम कुबेर वरुण और इंद्र राजा इन सब के प्रतिनिधि होते हैं और इन्हीं लोगों के सहयोग से राजा प्रजा का पालन करते हैं यानी सभी 8 देवता उनके शरीर में विद्यमान हैं। अतः रानी एक से ब्याही नहीं है किसे ब्याही है कितने लोगों से 8 लोगों से तो 8 लोगों की पत्नी क्या कहा जाएगा है? तो जब यह बात कह दिए तो रानी बहुत प्रसन्न हुई है कहती है अलबंदारू 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 और आकर के और जमुनाचार्य को आलिंगित की कि पुत्र 12 साल के छोटे बालक थे पुत्र तूने बड़ा अच्छा काम किया एक कोलाहल था सही में कोलाहल था कोलाहल मतलब डिस्टर्बेंस है, न्यूसेंस। तो वास्तव में न्यूसेंस था, अच्छा किया तुमने हरा दिया। अब नियम के अनुसार राजा को 50% का राज देना ही पड़ा। तो इस प्रकार से 45 साल तक जमुनाचार्य राज्य किए। उसके बाद में उनके दादाजी जो संन्यास ले लिए थे नाथ मुनि, वे अपने शिष्यों को भेज करके और जमुनाचार्य को प्रचार करा करके घर गृहस्थी से राज्य से बाहर निकाले थे। तो मैं एक कह रहा था कि जो राजा होता है उसे अपने प्रजा के कर्म का छठा भाग उसको लेना पड़ता है। इसीलिए यहां पर कहते हैं महाराज पृथु कि राजा अपने कर वसूल कर करके ही, जो राजा अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को करने की शिक्षा न देकर उनसे केवल कर वसूलता है, उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना होता है, छठा भाग लेना पड़ता है। ऐसी औन्नति के साथ ही राजा की अपनी संपत्ति भी जाती रहती है, सब ऐश्वर्य खत्म हो जाता है। अतः सेफ साइड है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा स्वगतो विवाह स्मृत मुंडिकाच स्वभयांतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। इसीलिए कह रहे भैया देखो, हम लोग संसार में काम कर ही रहे हैं, कोई सहज कल का होगा, गलत काम करता होगा, और सब कुछ को बराबर करने के लिए क्या करो, हरे कृष्ण का डिवोटी बन जाओ। सिंपल फॉर्मूला महाराज पृथु कहते हैं, ततः प्रजा भर्तृपिंडार्थम स्वार्थमेव अनुसूयव कृतम अधोक्षदा धियातर ही मे अनुग्रह कृत। आप लोग कृपा करके मुझ पर अनुग्रह करने के लिए अपने बुद्धि को अपने मन को भगवान अधोक्षज में लगा दीजिए। भगवान अधोक्षज में अपना मन लगाएंगे तो आपका भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा, राजा का भी कल्याण होगा और प्रजा का। ततः प्रजा भर्तु पिंडार्थम, कहते पिंडार्थम मृत्यु के पश्चात पिंडार्थम स्वार्थम एव अनुसूयव, द्वेष ईर्ष्या को निकाल करके अपने कल्याण के लिए और मेरे कल्याण के लिए कुरुता अधोक्षजाधिया अधोक्षद में अपना मन लगा दीजिए, कृष्ण का भक्त बन जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इस प्रकार से महाराज पृथु का उपदेश समाप्त हुआ। अब समाप्त करने के बाद वहां जितने ऋषि महर्षि लोग बैठे हुए थे उन लोगों से अब ये बात का अनुमोदन करा, भाई बहन जो कहा हूं ठीक कहा हूं गलत कहा हूं आप लोग अनुमोदित कीजिए। तो यह श्लोक आया है, श्लोक 26, कहते जुयम आप सब, त्वाम जुयम जुयम आप सब तद अनुमोदध्वम, जो मैंने कहा है उसका अनुमोदन कीजिए कि मैं सही कहा हूं कि गलत कहा हूं। हे पित्री हे देव हे ऋषय, सब लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, केवल तीन लोगों से, पितरों से देवताओं से और ऋषियों से। इन तीनों का विशेषण यहां पर दिया गया है अमला। अमला मतलब मल रहित, आप लोग निष्पक्ष हो, आप लोग किसी का पक्ष नहीं लोगे। पितर हो तो एक मेरा पक्ष लोगे, या पितर सबके पितर है, इनके पितर हमारे पितर, देवता हैं क्या ऋषि हैं, अंग्रेजी में न्यूट्रल कहते हैं ना, अमला का अर्थ हुआ न्यूट्रल। आप लोग न्यूट्रल हो तो अपना न्यूट्रल मत दीजिए, आप लोग इम्पार्शियल डिसीजन दीजिए कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है कि नहीं है। हम लोग कहते हैं भाई यदि हम पर तुम्हें विश्वास है तो उनसे पूछ लेना, कहते हैं बात ना, हमसे भी हम तो इनसे पूछ लो, असीम प्रभु से पूछ लो बात सही है कि नहीं, मंगलारती आना चाहिए कि है? पूछ लो इनसे, क्लास में आना चाहिए कि नहीं, तुम्हें मुझसे विश्वास नहीं है। तो वैसे ही सरल भाषा में कहेंगे भैया तुम लोग को हम पर विश्वास नहीं है तो हे ऋषि लोग जो अमल लोग हैं, जुयम तद अनुमोदध्वम आप लोग अनुमोदन कीजिए, जो मैं बात कहा हूं आप लोगों से हां जो प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग अनुमोदन कीजिए। हे ऋषिगण हे देवतागण, हे पितर लोग, क्योंकि आप लोग निष्पक्ष हैं। तो मानो रिसीवर करते, भाई हम तुम्हारे बात का अनुमोदन, हम तो जानते हैं कि बात सही है, तुम कह रहे हो उतना बात सही, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। यदि हम अनुमोदन कर देंगे और हमारे अनुमोदन करने से ये लोग सब प्रजा बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सबको अपना स्वार्थ होता है ना, हमें क्या प्राप्त होगा? भैया तुमको प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे प्रजा को प्राप्त होगा, तो हमको क्या प्राप्त होगा? किस बात का अनुमोदन करना था? अनुमोदन करना था कि सब लोग अपने कल्याण के लिए मरने के बाद भगवान के धाम में जाने के लिए हरे कृष्ण का डिवोटी बन जाओ, बस इसी का था अनुमोदन। कुरुत अधोक्षदम, कुरुत अधोक्षद धीय तरही, कितना सुंदर बात यहां पर कहे हैं, तरही। अतः आप लोग अपने धिया को, मन बुद्धि को किसमें लगा दो? अधोक्षज में। मैं अनुग्रह कृत, इतना कर मुझ पर अनुग्रह करो, यदि मैं कुछ किया हूं तो आप लोगों के लिए, मरने के बाद मैं भी पर जाऊंगा और आप लोग भी, दोनों के लिए। तो ऋषि लोग बीच में आ गए, हमारा क्या होगा? तुम दोनों पर जाओगे तो हम लोगों क्या होगा? तो अब यहां पर उन लोगों के लिए नीचे का श्लोक कहते हैं, कहते कर्तु शास्तु, करने वाला यानी आप लोग हे प्रजागण, शास्तु कराने वाला यानी मैं, और अनुज्ञातु, हे ऋषि लोग आप चिंता मत कीजिए, आप लोग भी साथ में हैं, अनुज्ञातु समर्थन करने वाला, यत प्रत्य तत्फलम, मरने के बाद सब लोगों को एक ही गति मिलेगी, जो हरे कृष्ण का भजन करेगा उसको भी वही गति मिलेगी, जो हरे कृष्ण का भजन कराएगा उसको भी वही गति मिलेगी, और जो हरे कृष्ण का भजन करने में जो सहयोग देगा, अनुमोदन करेगा, उसको भी वही गति मिलेगी। तीनों को प्रमाणित करते हैं, तरही शास्तुर अनुज्ञातुम तुल्यम, तुल्यम मतलब एक समान, कोई भेदभाव नहीं, यत प्रत्यह मरने के बाद तत्फलम, ठीक वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए हे ऋषि लोग, जो मैं बात कहा हूं उसका आप लोग अनुमोदन करें। तो बाद में ऋषि लोग उसका अनुमोदन किए हैं, यानी प्रमाणित किए हैं। तो इस श्लोक से एक हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भी हम कार्य करें वह प्रमाणित कार्य करें। प्रमाणित कार्य करने से हम लोग सुखी रहेंगे, और अप्रमाणित कार्य करने से हम लोग कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो जो व्यक्ति जिस आश्रम में है, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में रह करके प्रमाणित कार्य करें। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, य स शास्त्रम विद्धिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत, न स सिद्धिम वाप्नोति, न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्र के विधि विधानों को त्याग देता है, य स शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य, तिलांजलि देता है, त्याग देता है, वर्तते कामकारत, और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही केवल कार्यरत रहता है, मंगला आरती नहीं आएगा, क्लास नहीं आएगा, गुरु पूजा नहीं आएगा, सोलह माला जप नहीं करेगा, नींद आ रही तो सो जाओ, मंगला आरती नहीं आएंगे, बहाना बनाते मैं लेट नाइट प्रोग्राम गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, मैं घर में हाउस प्रोग्राम था, लेट नाइट हो गया, पेट खराब हो गया, बहाना हजार है। मंगला आरती आना हो तो मन कोई नहीं बहाना बनाएगा, और नहीं आना हो तो हजार बहाना आ जाएगा, रात को नींद नहीं आया, मच्छर काट रहा था, वर्षा हो गया, अच्छा नींद आ गया, बहुत कुछ हो सकता है बहाना, बहाना कमी नहीं है। तो यह शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य, शास्त्र के, साधुओं के, गुरु के वचन का परित्याग कर करके, वर्तते कामकारत, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई काम करता है, कहते न स सिद्धिम वाप्नोति, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। सिद्धि क्या है? हम लोग हरे कृष्ण डिवोटी हैं तो सिद्धि क्या है? नामे रति, वो तो फल हो गया, नाम में रति उत्पन्न होना, ये सिद्धि है, नाम में अटैचमेंट होना, ये सिद्धि है। न स सिद्धिम वाप्नोति, न सुखम, जब सिद्धि की प्राप्ति होगी तो अपने आप सुख रहेगा। जब नाम जप करेंगे रोमांचकंपा सुतरंग भांजो, जब नाम जप करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, दिल पिघल जाएगा। महाप्रभु बढ़कर जप करते थे, आंखों से अश्रु धारा बहती थी, नयनम गलद अश्रु धारया, बदनम गदगद हृदया गिरा, पुलकर नचीव बहु कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति। जब आपका नाम लेने से ये आता है, न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गति, और परम गति जो है कृष्ण प्रेम। बैक होम, बैक टू गॉड हेड। इसकी प्राप्ति नहीं होगी यदि शास्त्र साधु और गुरु का आज्ञा पालन नहीं करेंगे। इसलिए भगवान उपदेश देते हुए गीता में कहते हैं, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य अकार्य व्यवस्थित, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मंगलारती जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसका प्रमाण कौन होना चाहिए? शास्त्र, साधु, गुरु। गुरु जी ने कहा है पालन करेंगे, साधु लोग कहते हैं पालन करेंगे, शास्त्र में भी यही कहा गया है पालन करेंगे। साधु शास्त्र गुरु वाक्य चिते ते करी आख्य आर ना करी वो मने आशा, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित, वैसा करेंगे तो हम लोग सुखी रहेंगे। तो इसलिए अनुमोदन जरूरी है। यहां पर अनुमोदन मतलब स्टैंप करने का बात कह रहे हैं महाराज पृथु। ठीक है, तो इस श्लोक में इसको समरी इस प्रकार से है कि महाराज पृथु अब वहां पर पितर लोग, देवता लोग, ऋषि लोग एकत्रित थे जो कि अमल है, निष्पक्ष भाव से जो अपना बात कहेंगे इम्पार्शियल रूप से, उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि आप लोग भी जो मैं कहा हूं, यदि सही कहा हूं तो इसका अनुमोदन कीजिए, यदि गलत कहा हूं तो आप बताइए कि सही क्या है, और ऐसा करेंगे तो राजा प्रजा और आप सब लोग मरने के बाद भगवत धाम को प्राप्त करोगे। ये भगवान है स्वयं महाराज पृथु और वे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये आशीष वचन है एक तरफ से। धन्यवाद, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, कमेंट, क्वेश्चन और कमेंट? यस, एक बार मैं दिल्ली कथा कह रहा था, कोई कोई प्रश्न है का? प्रभु जी आप ऐसा कथा कहे कोई प्रश्न रह ही नहीं गया है, क्योंकि उनको भूख लगा था जल्दी जाने का था, तो बहाना हजार होता। प्रश्न करो, चिंता मत करो। प्रभुपाद जी कहते आस्किंग क्वेश्चन इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ जी
प्रभु। हरे कृष्णा। आपने कहा कि सुंदर वस्तु से आकर्षित होना स्वाभाविक है, और श्री कृष्ण भगवान अति सुंदर है, तो भी बहुत सारे लोग उपदेवता से आकर्षित होते हैं और उनका आराधना करना लगता है, इसका कारण क्या हो सकता है?
बहुत से लोग
उपदेवता डेमीगॉड्स को, डेमीगॉड से आकर्षित होते हैं और उनका आराधना करते हैं।
तो अलग अलग लोगों के सुंदरता का मापदंड अलग अलग है। एक कसाई है, वो सुंदर हट्ठा कट्ठा गाय देखेगा तो उसका सुंदरता वही है, समझ रहे हैं ना? एक कामी व्यक्ति है, एक गजगामनी को देखेगा, सुंदर स्त्री को, तो उसका सुंदरता उसके चाल में ही है। तो सुंदरता का परिमाप है। कृष्ण के सुंदरता को वही समझ सकता है जिसका कृष्ण से कुछ लेना देना है, कृष्ण से जिसका लगाव है, किसी भी प्रकार से, साधु संघ के द्वारा कैसे भी। यस, गोपेश्वर प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु।
ये सुलोचन प्रभु हैं, उनका सुंदरता है गोविंदा रेस्टोरेंट है ना, क्लास छोड़कर चले गोविंदा रेस्टोरेंट।
यमुनाचार्य उन्होंने जब चैलेंज किया कोलाल पंडित को, तो उनके गुरुजी ने भी कहा कि बेटा ये मत करो, तो एक हिसाब से गुरु का आदेश का उल्लंघन। तो इनमें इसमें उनको सफलता कैसे प्राप्त हुआ?
गुरु ने कहा कि आप ये मत करो, कहने के दो अर्थ थे। देखो
जो तीन प्रकार के चेले होते हैं, एक होते हैं गुरु भोगी, नहीं गुरु सेवी, गुरु भोगी और गुरु द्रोही। तो जमुनाचार्य गुरु सेवी थे, गुरु के बात को जानते थे कि उनका आंतरिक इच्छा क्या है, बाहर से कह रहे थे आयु के अनुसार, लेकिन जमुनाचार्य के विषय में भाष्याचार्य जानते थे। और जो बाहर का बात कह रहे थे उसके लिए उन्होंने क्या कहा, गुरुदेव यदि आपकी कृपा रहेगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब ही थ्रो द बॉल इन हिज कोर्ट कि आप कृपा देना चाहते हो कि नहीं, ये दे दोगे तो मैं जरूर प्राप्त कर दूंगा, नहीं दोगे तब तुम कहां जाऊंगा। तो गुरु का कृपा था, जज बाय रिजल्ट, गुरु कृपा था।
दूसरा प्रश्न है, कमेंट है, जैसे आपने कहा पितृ देव और ऋषियों, इनके उन्होंने विटनेस, मतलब जैसे आपने कहा कोई आर्ग्यूमेंट होता है एक व्यक्ति को लेते हैं भाई सही है कि नहीं, तो ये विटनेस भी न्यूट्रल, आपने न्यूट्रल होते हैं तो न्यूट्रलिटी में भी वो ज्ञानी होंगे तो न्यूट्रल बनेंगे।
विटनेस को न्यूट्रल ही होना चाहिए, इसलिए अमला शब्द कहते हैं ना, आप लोग अमला हो, न्यूट्रल हो,
मतलब वो विद्वान है इसके लिए न्यूट्रल है। जैसे अगर दो बॉक्सर लोग, दे शुड बी स्ट्रांग इंटेलिजेंट, अदरवाइज
अमला कहा गया है ना, अमला का मतलब कि फ्री फ्रॉम ऑल डिवाइसेज।
धन्यवाद।
और कोई प्रश्न माता जी लोगों का?
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा कि राजा को प्रजा का छठा भाग लेना पड़ता है, तो पांच भाग कौन कौन से हैं जरा उनके बारे में बताएंगे प्रभु जी।
मैं जानता नहीं हूं, देखना पड़ेगा। पांच भाग जो करता है वो लेगा, कर्म फल तो लेना ही पड़ेगा ना। मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूं, मुझे याद अभी याद नहीं आ रहा है इसलिए बता नहीं चाहता हूं। हाँ ना ना, वो तो कर्जा है, वो नहीं है। हाँ और सब 94% उसको ही लेना पड़ता है, यही हुआ। हाँ सिम जी बता रहे हैं कि 100 में से छठा 6% केवल वो लेगा और 94% जो व्यक्ति करता है उसको लेना पड़ेगा, कर्म फल भोगना पड़ता है सबको ना। तो सर 1/6 था, वन सिक्स आप लोग समझ लो, जो भी है 1/4 मतलब 25 हो गया ना, एंड 1/6 16% हो गया। चलो ठीक है, आप लोग जानते हैं इस बात को, बताने की जरूरत नहीं ज्यादा। और कोई प्रश्न? बताइए। नहीं, जो मैं कथा कहा हूं उसी में से बता पूछिएगा, अब जुहू बीच में वर्षा हो गया उसे बात बंद पूछिएगा हमारे पास, जो मैं कहा हूं उसमें से कुछ है। ठीक है उनके पास और कोई प्रश्न? हाँ बोलो बोलो बोलो, दे दे। ये भक्त बड़ा शांत है, ये कल जप करता है, किसी बात नहीं प्रश्न ही नहीं पूछते, दूसरे को कहा तुम पूछो हमारे बदले में।
हरे कृष्ण प्रभु जी, द्रौपदी के 5 पति थे तो उनको पतिव्रता कहा जाता है, तो आपने बताया भी 8 पति के पतिव्रता।
द्रौपदी को आशीर्वाद था भगवान शिव का पूर्व जन्म से, द्रौपदी जान करके 5 पतियों से शादी नहीं की थी, द्रौपदी को आशीर्वाद था। द्रौपदी पूर्व जन्म में जब भगवान शिव से तपस्या की थी, उसने कहा था मुझे एक ऐसा पति मिले जो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, 5, तो इसलिए 5 पांडव। और द्रौपदी को जब लेकर के आए तो माता कुंती जो कहती थी वही पांडव लोग करते थे, कहा तुम 5 भाई आपस में बांट लो।
दूसरे
तो प्रमाण था, एक तो पूर्व जन्म का प्रमाण था और दूसरे माँ जो है उनका ऑथराइजेशन था।
कलयुग में करता कोई,
अच्छा जब मैं कह रहा था तो उस समय एक आया था मेरे मन, कोई जरूर प्रश्न पूछेगा। कलयुग में
सिर्फ करता कोई पाप का भागी होना पड़ता है ऐसा मैं सुना है।
हाँ करता को होना ही पड़ता है, केवल 1/6 जो होता है वो राजा लेता है या लीडर लेता है या बाप मां लेता है, जो भी लीडर हो जो भी लीडर के पोजीशन पर हो, राजा, मोस्टली राजा, टेम्पल पर्सनल, भक्तों के लिए
इस प्रश्न के ऊपर एक डाउट आता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई डिवोटी कुछ गलती करता है तो आपने कहा टेम्पल प्रेसिडेंट को ही भोगना पड़ेगा 1/6, तो उसमें बीच में और भी बहुत से एचओडी अथॉरिटी है, एचओडी है टेम्पल का, उनको भी तो उसमें भागीदारी नहीं है।
1/6 में सब लोग बांट लेते हैं, गुरु से लेकर के सब लोग, ज्यादा नहीं मिलता है। गुरु को भी कुछ मिलता है, टेम्पल प्रेसिडेंट को, टेम्पल कमांडर को, सबको मिलता है 1/6, जनरल सेक्रेटरी को मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग मंगल आरती आया करो, नहीं तो फिर सफर करना पड़ेगा। और कोई प्रश्न? ऑल राइट, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराशि भागवतम की जाय। शील प्रभुपाद की जाय। सीताराम।